बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा अभिवादन। श्रोताओ, कैसे हैं आप? हमें पूरा विश्वास है कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हैं और हमारे साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो आइए, इससे पहले कि आज के प्रवचन को हम सुने, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जिंदगी बर्बाद किए
सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। हम आशा करते हैं कि आप प्रभु की महान अनुकंपा से कुशल हैं और आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार हैं। सो हम भी इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर इस कार्यक्रम को सुनते रहें। और जब आप कार्यक्रम को सुनते हैं तो आप हमें पत्र लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके पत्रों के द्वारा हमें आत्मिक प्रोत्साहन मिलता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए नियम से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ये पुस्तक एक विशेष प्रकार की शैली में लिखी गई है, जिसे अपोकालिप्टिक अर्थात भेद प्रकट करने वाली भाषा कहा जाता है। ये प्रकाशनों व दर्शनों की पुस्तक है और संपूर्ण पुस्तक चार दर्शनों पर आधारित है। पुस्तक के केंद्र प्रभु यीशु मसीह हैं। जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पद से स्पष्ट है, इसलिए प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, धन्य है वो व्यक्ति जो इस नबूवत के वचन को पढ़ता, सुनता और उसका पालन करता है। सुप्रिय मित्र, आप भी ध्यान रखें कि ये आपके उद्धारकर्ता, आपके स्वामी प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। सो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हम आज के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे, हम प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यस्त जीवन में हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन को समझने के लिए हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, उस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है, किसी क्लेश में है, किसी गहन दुख में डूबा हुआ है, प्रभु आप उन पर दया करें, उनके दुख को दूर करें, उन्हें शांति प्रदान करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल में देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में हम समुद्र से निकलने वाले पशु के विवरण के विषय में पढ़ रहे हैं। प्रेरित यूहन्ना ने हमें बताया कि वो समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। इसको समझने के लिए हमें 17वें पद को देखना पड़ा। 12वें अध्याय का 17वां पद हमको बताता है कि अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने को निकला और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। ये वो कौन है? ये शैतान है, ये अजगर है जो समुद्र की बालू पर खड़ा हुआ है। और तब प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। हम समुद्र में से निकलने वाले इस पशु के विषय में पढ़ रहे हैं। यूहन्ना बताते हैं कि इस पशु के 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर ईश निंदा के नाम लिखे थे। मित्रवर, वास्तव में शैतान परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति रहा है और ये पशु भी शैतान की श्रेष्ठ कृति है, अर्थात उसकी कारीगरी है। डैनियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय के 7वें और 8वें पदों में इस पशु के चित्र को देखा। वहां हमने देखा कि ये जंगली पशु दानियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय के 4थे पशु से मिलता जुलता है और डैनियल नबी का संदर्भ रोमी साम्राज्य से संबंधित है। ये छोटा सा सींग रोमी साम्राज्य का प्रतीक है। हमने देखा कि ये नबूवत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रमाणित भी हो चुकी है। और मेरे मित्र, प्रेरित यूहन्ना के जीवन काल ही में दानियल नबी की नबूवत का बहुत सा अंश पूर्ण हो चुका है। दानियल नबी की नबूवत में हम 3 पशुओं को देख रहे हैं। प्रथम 3 पशु 3 बड़े राज्यों के प्रतीक थे। सिंह, जो बेबीलोन का प्रतीक था। रीच, जो मादी और फारसी राज्य का प्रतीक था। तथा चीता, ये यूनानी साम्राज्य का प्रतीक था। और ये नबूवत यथा शब्द पूर्ण हो चुकी है। जब दानियल नबी ने इन बातों को लिखा, उस समय ये नबूवत का वचन था, किंतु यूहन्ना के समय में ये नबूवत का वचन नहीं था। ये नबूवत पूर्ण हो चुकी थी और इसलिए यूहन्ना 4थे पशु से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। वह अपना ध्यान 4थे पशु और छोटे से सींग पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि रोमी शासक प्रकट हो चुका था। प्रेरित यूहन्ना रोमी शासक के समय में थे और रोमी शासक डोमिशियन के द्वारा पटमुस के टापू पर बंदी बनाकर भेज दिए गए थे। पतन तथा दुर्बलता के चिन्ह रोमी साम्राज्य में पहले ही से दिखाई दे रहे थे और यूहन्ना उन बातों के प्रत्यक्ष दर्शी थे जो दानियल नबी के समय में भविष्य में घटने वाली बातें थीं। दूसरे शब्दों में दानियल नबी की नबूवतों को प्रेरित यूहन्ना वर्तमान में पूर्ण होते देख रहे थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रेरित यूहन्ना का मुख्य बल दानियल नबी की पुस्तक के सातवें अध्याय के छोटे सींग के ऊपर है, जो एक शासक का प्रतीक है, और ये छोटा सा सींग हमारे सामने पशु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और प्रेरित यूहन्ना द्वारा की गई नबूवत में ये पशु जीर्णोद्धारित अर्थात पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य पर नियंत्रण तथा शासन करता हुआ दर्शाया गया है। इस प्रकार दानियल नबी की पुस्तक के सातवें अध्याय में उल्लेखित छोटा सा सींग तथा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के तेरहवें अध्याय में उल्लेखित पशु दोनों एक ही हैं। और आप स्वयं ही देख सकते हैं कि दानियल नबी की पुस्तक का सातवां अध्याय इस अनुच्छेद को समझने के लिए आधारीय अर्थात बुनियादी बात है। श्रोता, ये जंगली पशु पाप पुरुष है और मसीह विरोधी है, जो संसार का अंतिम तानाशाह है। और इस अध्याय का अंतिम पद इस विचार की पुष्टि करता है, इसे पक्का करता है। मेरे साथ देखिए प्रकाशित वाक्य तेरहवां अध्याय उसका अठारहवां पद। इस पद में इस प्रकार से लिखा है, बुद्धिमानी इसी में है जिसे समझो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। तो इस प्रकार से ये जंगली पशु पाप पुरुष है और मसीह विरोधी है, जो संसार का अंतिम तानाशाह है। और यह अठारहवां पद स्पष्ट करता है कि वह एक मनुष्य है। मित्रवर, हम उस व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो अंतिम युग में विश्व तानाशाह के रूप में प्रकट होगा। श्रोता, 10 मुकुटों सहित 10 सींग महाक्लेश युग में रोमी साम्राज्य के 10 विभाजन के विषय में बताते हैं, अर्थात महाक्लेश काल में रोमी साम्राज्य 10 विभागों में बंट जाएगा। 10 सींग 10 राजा हैं जो इन 10 विभाजित राज्यों पर राज करेंगे। ये व्याख्या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 17वें अध्याय के 12वें पद द्वारा प्रमाणित होती है। यहां इस प्रकार से बताया गया है, जो 10 सींग तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्हें अब तक राज सत्ता नहीं मिली है, पर वे उस पशु के साथ राज की अधिकार पाएंगे। मित्रवर, हमने दानियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय में पढ़ा कि ये छोटा सींग सर्वप्रथम 10 में से है। 10 में से 3 सींगों को उखाड़ फेंकता है। ये छोटा सा सींग सर्वप्रथम 10 में से 3 सींगों को उखाड़ फेंकता है और तब सत्ता में आता है। तत्पश्चात वह अन्य 7 को भी अपने अधिकार में कर लेता है और तब तानाशाही आरंभ करता है, और इस प्रकार वह विश्व तानाशाह के रूप में प्रकट होगा। श्रोता, इन 7 सिरों को पहचानना सरल बात नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 17वें अध्याय के 9 और 10 पद में उन्हें 7 राजा बताया गया है। वैसे इस विषय में अनेक व्याख्याएं की गई हैं, मैं उनके विषय में इस समय चर्चा करके समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मुख्य बात यह है कि ये 7 सिर परमेश्वर की निंदा के दोषी हैं। ये ईश निंदा करेंगे। गोविट नामक बाइबल विद्वान द्वारा निंदा 2 प्रकार से प्रकट होती है। पहला, कोई व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर की समानता में रखना चाहता है। ये परमेश्वर के स्थान को हड़पना या उसका अपहरण करना है। दूसरे शब्दों में बलपूर्वक या चतुराई से परमेश्वर के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करना। दूसरा है निंदा का, ये दूसरा चिन्ह है दोष लगाना और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेना। श्रोता, मित्र के शासक प्रथम अपराध के दोषी थे। उन्होंने स्वयं को परमेश्वर की समानता में रख दिया और इतिहास साक्षी है कि रोमी साम्राज्य में शासक की पूजा की जाती थी। हम देखते हैं कि ये पशु इन दोनों बातों का दोषी है। वह स्वयं को परमेश्वर के स्थान पर रखने का दोषी है। वह अपनी पूजा करवाने का दोषी है। वह परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेने व उस पर दोष लगाने का भी दोषी है। सब आइए आगे देखते हैं। दूसरे पद को देखें। दूसरे पद में लिखा है, जो पशु मैंने देखा, प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था। उसके पैर भालू जैसे और उसका मुंह सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। मित्र, ये विचित्र सा दिखाई देने वाला पशु जल, स्थल और आकाश में कहीं भी दृष्टि में नहीं आया। निसंदेह ये एक तमाशा है। प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि ये कई पशुओं से मिलकर बना हुआ पशु है। और अब हम यहां मसीह विरोधी के विषय में अनेक महत्वपूर्ण वास्तविक तथ्य प्राप्त करने जा रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रोता, ये पशु अन्य पशुओं की भी विशेषताएं लिए हुए है, जिनकी चर्चा दानियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय में की गई है। ये पशु 3 राज्यों के प्रतिरूप हैं। अब इस बिंदु पर हमें पुनः दानियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय के महत्वपूर्ण पदों पर जाना होगा। ये पद हमारी महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है। आइए देखें। सबसे पहली बात, जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था। प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि वो पशु चीते के सदृश था। प्रिय मित्र, इस पशु का बाहरी रूप चीते के जैसा था। आइए दानियल नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय के 6 पद को देखिए। यहां बताया गया है, और देखो चीते के समान एक और जंतु था। दानियल कहते हैं कि देखो चीते के समान एक और जंतु था। उसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख थे। उस जंतु के 4 सिर भी थे और उसे प्रभुता सौंपी गई थी। मित्र, चीता यूनानी अर्थात मैकादोनिया राज्य का प्रतीक है। यूनान मैकादोनिया राज्य, इसको चीते के द्वारा दर्शाया गया है। यूनान इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तीव्रता, आधुनिकता अर्थात कला और विज्ञान के क्षेत्र में तथा दर्शन, भवन निर्माण कला तथा साहित्य के लिए विशेष उल्लेखनीय रहा है। यूनानी भाषा स्वयं में एक सुंदर और धनवान भाषा है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पशु का राज्य समस्त प्रकार की बाहरी संस्कृति से सुशोभित होगा, जैसा कि यूनान की संस्कृति का प्रताप व शांति। तब उसके बाद हम देखते हैं उसके पैर भालू जैसे थे। ये हमें दानियल नबी की पुस्तक के 2 पशु का स्मरण दिलाता है। 5वें पद में देखें, 5वां पद बताता है, और देखो रीछ के समान एक और जंतु था और एक ओर से ऊंचा था, जो एक ओर से ऊंचा था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं, और उससे कहा गया, उठ और बहुत मांस खा, उठ और बहुत मांस खा। श्रोता, ये पशु भालू या रीछ मादी फारस राज का प्रतीक है। ये इतिहास में प्रतिमा पूजक, वैभव तथा धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। और इस प्रकार पशु का राज्य प्रतिमा पूजक, वैभव तथा धन संपत्ति से परिपूर्ण होगा। और तब यूहन्ना बताते हैं, और उसकी मुखाकृति सिंह के समान थी। ये हमें दानियल के प्रथम जंतु का स्मरण दिलाता है। और ये सिंह बाबुल की निरंकुशता व एक तंत्रीय राज्य का प्रतीक है। बाबुल के राजा की तानाशाही हम दानियल नबी की पुस्तक में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर की तानाशाही को स्पष्ट रूप में देखते हैं। किस प्रकार उसने ये फरमान जारी किया कि प्रजा का प्रत्येक प्राणी राजा की प्रतिमा की पूजा करे, और ऐसा न करने पर उसने परमेश्वर के भक्त दानियल को शेरों की मांद में डलवा दिया। किंतु परमेश्वर ने वहां अपने भक्त को बचा लिया। उसने 3 इसराइली भक्तों को अग्नि की भट्टी में डलवा दिया, किंतु प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अग्नि से बचा लिया। और इस प्रकार उनके विश्वास ने ये प्रमाणित कर दिया कि राजा परमेश्वर नहीं किंतु यहोवा ही परमेश्वर है। हम दानियल नबी की पुस्तक का अध्ययन करते समय इस विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। मित्रवर, ऐसा था बेबीलोन का राजा। वह अपने मन के अनुसार राज्य करता था और नियम बनाता। वह एक कठोर तानाशाह था। प्रेरित यूहन्ना बताते हैं कि पाप पुरुष इसी प्रकार बेबीलोन के राजा के समान तानाशाही करेगा। वहां एक तंत्रीय राज्य होगा, वहां एक ही व्यक्ति तानाशाही करेगा। मित्रवर, जो विश्व तानाशाह विश्व पर शासन करेगा वह शैतान के अधिकार में होगा, अर्थात उसे शैतान अपनी सामर्थ्य, अपना सिंहासन तथा अपना अधिकार सौंप देगा, जैसा कि हमने दूसरे पद में पढ़ा है। इसे हम शैतान का अवतार कह सकते हैं। शैतान मनुष्य के हृदय में रहकर कार्य करता है, वो उन पर अपना अधिकार करता है, जैसा कि हम लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से कहते हैं कि शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में समा गया, या यहूदा इस्करियोती में समा गया। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय शिष्य शमौन पत्रस को डांट कर कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पाप पुरुष शैतान का अवतार होगा? आइए देखें कि पवित्र बाइबल इस विषय में क्या बताती है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, थिस्सलुनीकियों के नाम प्रेरित पौलुस की दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय 7-12 पदों को आप मेरे साथ देखिए। यहां इस विषय में प्रेरित पौलुस कुछ बातें स्पष्ट करते हैं। यहां लिखा है, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है, और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट किया जाएगा, जिसे प्रभु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, जिससे कि वे सब जिन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की परंतु दुष्टता में मग्न रहे दंड पाएं। 9वें और 10वें पद से यहां स्पष्ट होता है कि उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ्य, चिन्हों, झूठे आश्चर्य कर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। यहां पर स्पष्ट है कि पाप पुरुष शैतान की गतिविधियों के अनुसार आएगा। दूसरे शब्दों में वह शैतान का अवतार होगा। तब यहां प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के 3 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वह उससे मरने पर हो, पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। श्रोता, अब हमारा विषय है पशु और उसका प्राण घातक घाव। श्रोता, हम इस पद के साथ प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय के 8वें पद को भी देखेंगे। आइए हमारे साथ देखिए प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 8वां पद। इस पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस पशु को तूने देखा वह था तो परंतु अब नहीं है। वह अथाह कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है, पर पृथ्वी के निवासी, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उस पशु को जो था और अब नहीं है पर आने वाला है, देखकर अचंभा करेंगे। मित्रवत, सबसे पहली बात यहां पर है, अनेक पाठक इन दोनों पदों को पढ़कर ये धारणा बना लेते हैं कि ये पशु शैतान द्वारा पुनः जीवित किया जाएगा। श्रोता, ये कदाचित संभव नहीं है। शैतान को ये शक्ति नहीं मिली है कि वह किसी को पुनः जीवित कर सके। केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही ये शक्ति व अधिकार है कि वह मृतक को जीवित कर सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए इन शब्दों के विषय में पढ़ते हैं। आइए आप मेरे साथ देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 25 से 27 पदों को देखें। यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आ रहा है और अब है, जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है, और उसने उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। सो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवनदाता है। शैतान ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो आरंभ ही से हत्यारा और नाश करने वाला है। इसलिए मेरे मित्र, आपको जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के समीप आना होगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज के इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिला होगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या शंका है जिसके विषय में आप और अधिकारी से जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।